प्रकृति, मैं ब्रह्मा कुमारी अनीता यहाँ ओम शांति भवन जोनल ऑफिस में 32 साल से ईश्वरीय सेवाएं कर रही हूँ और उसके पहले बिलासपुर छत्तीसगढ़ से मैं बिलोंग करती हूँ। 33 साल पहले जब मैं ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संपर्क में आई, उसके पहले चूंकि लौकिक घर में ब्राह्मण परिवार से हैं इसलिए भक्ति पूजा का बहुत ज़्यादा माहौल था। घर में आए दिन जन्माष्टमी के समय में कृष्ण जी की पूजा करते थे, हरतालिका तीज के समय में शिव की पूजा करते थे, गणेश चतुर्थी में गणेश जी की पूजा करते थे, चैतन्य देवियों के समय नवरात्रि के समय घट स्थापना करके देवियों की पूजा करते थे, रामनवमी के समय राम जी की पूजा करते थे। इस प्रकार से हर एक महीने दो महीने में अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते थे। चूंकि घर के अंदर संस्कार थे इसलिए माता पिता के साथ में करना पड़ता था, लेकिन मन में एक प्रश्न हमेशा रहता था कि सबका मालिक एक है, परमात्मा एक है, भगवान एक है, तो इनमें से हम किसको भगवान कहें, गणेश जी को भगवान कहें कि कृष्ण जी को भगवान कहें कि रामचंद्र जी को भगवान कहें। लेकिन जैसे ही ये क्वेश्चन घर वालों से पूछते, बड़ों से पूछते, तो वो कहते थे भगवान के बारे में कभी भी ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए, संशय नहीं उठाना चाहिए, सब भगवान हैं, सबकी हमको पूजा करनी है। तो अंदर में एक भय भी बिठा दिया जाता था और छोटे समझ करके चुप कर दिया जाता था। तो इसलिए भक्ति पूजा पाठ करते रहे, चलते रहे, लेकिन अनायास ही 82 में जब बिलासपुर में सेवा केंद्र खुला, मार्केट में सेवा केंद्र था, बाहर बोर्ड लगा था प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, तो गर्मी का दिन था 7 मई, जब वहां से गुजर रहे थे तो उस बोर्ड को देखकर आश्चर्य हुआ, ये इतना छोटा सा मकान और इस मकान के अंदर में बोर्ड लगा हुआ है ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय। तो अनायास ही एक जिज्ञासा मन में उत्पन्न हुई और पहली मंजिल में मकान था सेंटर का, ऊपर चढ़ के गए तो वहां पर एक बहन थी, सफेद कपड़े पहनी हुई थी। उस बहन ने हमको एग्जीबिशन के चित्र समझाए, उसमें हमने देखा कि सर्व आत्माओं का पिता परमात्मा, और उसमें दिखाया गया था कि रामचंद्र जी ने भी रामेश्वर में शिव की पूजा की है, कृष्ण जी ने भी गोपेश्वर में शिव की पूजा की है, सभी अलग अलग धर्म पिताओं ने भी एक परमात्मा की ओर इशारा किया है, किसी ने नूर कहा है, किसी ने ज्योति कहा है। तो उस चित्र को देखते ही मेरे मन के अंदर जो कई सवाल थे परमात्मा को लेकर, वो सवाल मेरे हल हो गए, आंसर मुझे मिल गया और मुझे इतना अच्छा लगा कि वास्तव में भगवान तो एक ही है, लेकिन पहचान नहीं होने के कारण हमने अनेक भगवान बना दिए, और जो अनेक है वो वास्तव में देव आत्माएं हैं, महान आत्माएं हैं, धर्म पिताएं हैं, लेकिन परम पिता परमात्मा एक ज्योति स्वरूप निराकार ही है। चूंकि ब्राह्मण परिवार से ही थे इसलिए हमने कई ज्योतिर्लिंग यात्राएं भी की थी, रामेश्वरम, महाकालेश्वर, तो मुझे समझ में आ गया। बहनों ने कहा कि आपको यहाँ पर 7 दिन का कोर्स चलता है, वो कोर्स करेंगे तो आपको और अधिक गहरी जानकारी मिलेगी। तो जब 7 दिन का कोर्स करने के लिए आए तो स्वयं की भी पहचान मिली, परमात्मा की पहचान अच्छी तरह से मिल गई और परमात्मा आकर इस समय अपना कार्य कर रहे हैं। तो 7 दिन के कोर्स के बाद थोड़ा बीच में कभी आना हुआ, कभी नहीं आना हुआ, क्योंकि गर्मियों में छुट्टियां होती हैं तो इसलिए बाहर जाना हो गया, तो इसलिए थोड़ा डिसकंटिन्यू हो गया। लेकिन उन्हीं दिनों में नवरात्रि का दिन था क्वार महीने के, आदरणीय ओम प्रकाश भाई जी का आना हुआ उस सेंटर पर और बहनों ने सूचना दी कि आज विशेष क्लास यहाँ पर है। तो भाई जी जब क्लास करा रहे थे तो भाई जी का जो व्यक्तित्व हमने देखा, इतना आकर्षण हुआ। हमने ब्रह्मा बाबा की तस्वीर देखी थी लेकिन भाई जी को जब साक्षात देखा तो ऐसा अनुभव हुआ कि सचमुच में जो ब्रह्मा बाबा की तस्वीर है, ऐसी इस आत्मा के अंदर में भी इतनी महानता है, इतनी समानता है दोनों के अंदर में। और उन्होंने जो नवरात्रि का आध्यात्मिक रहस्य समझाया कि वास्तव में ये नवरात्रि पर्व शक्तियों का यादगार पर्व है। पूरे साल के अंदर में दो त्योहार ऐसे होते हैं, एक शिवरात्रि और एक नवरात्रि। शिवरात्रि शिव परमात्मा के अवतरण का यादगार है, और वो परमात्मा जब धरती में आते हैं तो नारी शक्ति को आगे रखते हैं, उनके द्वारा विश्व परिवर्तन का कार्य करते हैं। तो हमने गीता शास्त्र भी पढ़ी थी, और उसके अंदर में हम पढ़ते थे यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्। तो सवाल उठता था कि वास्तव में वो समय तो फिर से आ गया है, इतने संसार के अंदर में पाप अत्याचार, तो भगवान का आखिर भी अवतरण कब होगा। तो आदरणीय भाई जी की उस क्लास से मुझे स्पष्ट हो गया कि यही समय है धर्म ग्लानि का, और अभी वो परमात्मा पिता इस सृष्टि पर आए हैं, और उन्होंने नारी शक्ति के द्वारा या माताओं बहनों के द्वारा विश्व परिवर्तन का कार्य करा रहे हैं। तो मुझे भी प्रेरणा आई कि मुझे भी जब भगवान स्वयं माताओं बहनों को इतना ऊंचा उठा रहे हैं, स्वयं बहनों को ही कन्याओं को ही परमात्मा शिव शक्ति बना रहे हैं, और ये सभी देवियां सब कन्याओं के ही रूप हैं, तो मुझे भी संकल्प मैंने कर लिया कि मुझे भी इसी कार्य में अपना सारा जीवन लगाना है। और वो संकल्प मेरा थोड़े समय के बाद ही पूरा हो गया, और बहनों को देख करके भी मुझे इतना अच्छा लगता था, उनका श्वेत वस्त्र देख करके, उनकी शैली, उनका प्यार, उनका स्नेह देखकर ऑटोमेटिक खिंचाव होता था, और इच्छा होती थी कि मुरली सुनने के बाद हम रुक जाए यहीं पर। तो कभी बहनें कहती थी आप शाम को आना, ये सेवा है, तो शाम को जाते थे, बहनों के सानिध्य में रहते थे। फिर उसके बाद से फिर जैसे ही आदरणीय भाई जी की क्लास मैंने सुनी, मुरली क्लास में मैं रेगुलर जाने लगी, और जैसे जैसे मुरली सुनती गई ज्ञान के रहस्य स्पष्ट होते गए, और परमात्मा के साथ में हमारा कनेक्शन भी गहरा होता गया। अभी तक जिस भगवान को हम ऊपर वाला कहकर याद करते थे, ऐसा लगने लगा कि वो भगवान तो मेरे साथ है और मुझे सर्व संबंधों से अनुभव कराते हैं, न वो मेरे सिर्फ पिता हैं बल्कि परमात्मा मेरी माँ भी है, परम शिक्षक भी हैं, सतगुरु भी हैं, सर्व संबंध मेरे परम पिता परमात्मा शिव बाबा ही हैं, और उनके सानिध्य का अनुभव होने लगा। और धीरे धीरे वो समय भी आ गया। आदरणीय भाई जी ने ही ऐसी युक्ति बताई, क्योंकि मैं जॉब भी करती थी, टीचर थी मैं, तो इसलिए थोड़ा जॉब छोड़ना, और वो भी गवर्नमेंट जॉब छोड़ना मुश्किल होता, लेकिन भाई जी ने ऐसी विधि मुझे बताई। भाई जी ने कहा कि पहले थोड़े दिन रह के देखो, फिर घर से छुट्टी मिलेगी तो फिर और ज्यादा दिन रहना। तो मैं घर से आश्रम तो आ गई, और आश्रम से ही स्कूल में भी पढ़ाने के लिए भी जाती थी, और बाबा के घर में भी सेवाएं करती थी। तो मुझे अंतर महसूस होने लगा कि बाहर की दुनिया में क्या वातावरण है, और आज की दुनिया में बाबा के घर में कितना सुंदर वातावरण है। वास्तव में स्वर्ग की स्थापना तो यहीं से हो रही है, क्योंकि शिक्षकीय कार्य एक पुण्य का कार्य होता है। तो मुझे वो चांस भी मिला जब तक मैंने जॉब किया कि बच्चों को भी परमात्मा का परिचय दिया जाए, और आज की शिक्षण पद्धति में आध्यात्मिकता का लोप हो चुका है, तो कैसे आध्यात्मिक ज्ञान को जोड़ दिया जाए, नैतिक मूल्यों को जोड़ दिया जाए, तो उनके अंदर में भी परिवर्तन आएगा। तो मैंने वो प्रयोग भी किया, लेकिन दो साल के बाद चूंकि ओम शांति भवन का निर्माण हुआ, और यहाँ पर 500 मूर्तियों का संग्रहालय बना, फिर गर्मी की छुट्टी में आदरणीय भाई जी ने यहाँ पर मुझे बुलाया, और भाई जी ने कहा कि अब आप ईश्वरीय सेवा का कार्य करो, अब आपको लौकिक जॉब करने की जरूरत नहीं है। तो भाई जी की आज्ञा को शिरोधार्य कर मैं ओम शांति भवन में 86 से सेवाएं देने लगी, और म्यूजियम की ही सेवा, म्यूजियम के साथ साथ एक दीदी और थी, वो भी पहले लौकिक जॉब करती थी, विमला दीदी, और उन्होंने भी जॉब छोड़ करके सेवा में जीवन समर्पित किया था। तो भाई जी ने उनके साथ मुझे सेवाओं में रखा और कई शहर के वीआईपीस की भी सेवाएं की। उस समय ज्ञानंजलि प्रोग्राम चलता था यहाँ पर, तो उस प्रोग्राम के निमित्त कई गेस्ट बुलाने पड़ते थे, तो वीआईपीस के पास में कैसे जाके बातचीत करना है, कैसे मिलना है, और साथ साथ ज्ञानंजलि प्रोग्राम के बहाने मंच संचालन कैसे करना है, किस टॉपिक पर कैसे भाषण करना है, क्या करनी है, ये सारी कलाएं शिव बाबा ने मुझे सिखा दी। और 5-6 साल के बाद फिर आदरणीय भाई जी ने मुझे एक ऐसे स्थान पर सेवा के लिए भेजा जो कि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र था, सरगुजा अंबिकापुर आज कहते हैं। आज तो वो क्षेत्र काफी डेवलप हो चुका है, लेकिन उस समय 91 की बात है। क्योंकि भाई जी ने मुझे वहां पर निमित्त बड़ी बहन के रूप में भेजा था, हालांकि मैं थी 25-26 साल की, लेकिन भाई जी ने कहा अब आपने यहाँ जो अनुभव किया है अब वहां पर जा करके अच्छी सेवाएं जमाना, क्योंकि एक साल ही वहां पर सेवाएं सेंटर खुले हुए थे। तो मैं और मेरे साथ में एक छोटी बहन और एक कन्या, हम लोग तीन बहनें रहती थी, और 91 की बात है। उस समय हमारे यज्ञ के अंदर में बाबा ने प्रोग्राम दिया था कि तपस्या वर्ष के रूप में मनाना है और सबको 4 घंटे योग का चार्ट बनाना है और सब भाई बहनों को सेंटर में तपस्या करनी है, अव्यक्तवाणी अच्छी तरह से पढ़नी है, योग करना है। तो हम चूंकि पहले पहले सेंटर संभालने के लिए गए थे, तो इसलिए मन में बहुत उमंग उत्साह, और ऐसा लगता था जो बाबा ने कहा है, जो मधुबन का प्रोग्राम आया है, हूबहू 100% हमको वही करके दिखाना है। तो हम तीनों बहनें खूब अच्छी तरह से स्टडी करती थी और 4 घंटे का योग का चार्ट भी हम लोग रखते थे। किसी दिन 1 घंटा कम हो गया तो अगले दिन हम 4 घंटे के बदले 5 घंटे हम लोग योग करते थे, और मुरलियों का प्रश्न उत्तर निकालते थे, भाई बहनों की परीक्षा लेते थे। लेकिन मेरे मन में एक क्वेश्चन उठता था कि 1 सेकेंड का पेपर, बाबा कहते लास्ट पेपर, अंतिम पेपर 1 सेकेंड का ही होगा, तो वो 1 सेकेंड का पेपर कैसे होगा? तो हमेशा मन में यह सवाल रहता था। तो एक बार ऐसी हमारी परीक्षा हो गई, रात के 11 बजे का समय था, 11:30 बजे। उस समय सेंटर में लैंडलाइन फोन भी नहीं हुआ करते थे, मोबाइल भी नहीं थे हमारे पास में, कुछ भी नहीं था। हम तीनों बहनें योग करके बाबा को याद करके हम 10:30 बजे रूम में गए, और 11:30 बजे रात को कॉल बेल बज गई, सेंटर की घंटी बज गई। क्योंकि हम लोग पहली पहली बार सेंटर संभाल रहे थे, इतना अनुभव नहीं था कि इतनी रात में दरवाजा नहीं खोलना चाहिए, तो हमने दरवाजा खोल दिया। तीनों बहनें हम गए बाहर, और जैसे ही दरवाजा खोला तो एकदम अवाक रह गए। तीन यंग यूथ थे और बिल्कुल अस्त व्यस्त, शराब पिए हुए, बदबू आ रही थी शराब की। दरवाजा खोलते ही उन्होंने ड्राइंग रूम के अंदर आ गए और बैठ गए, और हमें कहने लगे कि जल्दी ही दरवाजा बंद कर दो, पुलिस हमारा पीछा कर रही है। तो हमको एहसास हो गया कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, हमको नहीं खोलना था दरवाजा, लेकिन हमने खोल दिया। तो अंदर अंदर खूब बाबा को याद करने लगे, बाबा आप हमारे रक्षक हैं, हमने गलती कर दी, अब आप अपनी बच्चियों को भी संभालना और आप अपने घर को भी संभालना। और थोड़ा सा डर लगा, लेकिन वो कंटिन्यू बोलते रहे आप लोग दरवाजा बंद करो, लेकिन हमने अंदर का एक दरवाजा बंद किया और ड्राइंग रूम अलग हो गया, वो बैठे रहे ड्राइंग रूम में, और हम बाबा के कमरे में जाकर योग में बैठ गए। और उस समय मुझे वो गीत बहुत अच्छा लगता था, तेरा मेरा है कल्प कल्प का प्यार, हम तुम पर बलिहार, बाबा तुम हम पर बलिहार, वो गीत याद करने लगे। और बाबा के कमरे में हमने लाल लाइट भी बंद कर दी और खाली शिवलिंग जल रहा था, और हम सब योग में बैठ गए। फिर थोड़ी देर के बाद हमने देखा कि वो भाई तीनों बाहर गलियारे में आ गए, और बाबा के कमरे के बाहर वो खिड़की में से झांकने लगे। दूसरी छोटी बहनें थी वो दोनों बहुत डर गई और कहने लगे कि वो यहाँ आ गए हैं, झांक रहे हैं, यहाँ से झांक रहे हैं। तो हमने कहा नहीं, हम बाबा के साथ बैठे हैं, बाबा हमारे साथ है, बाबा को याद करो, हमारा रक्षक शिव बाबा है। फिर थोड़ी देर के बाद वो ऊपर छत में चढ़ गए, चूंकि सिंगल मंजिल मकान था और एक ऐसी भी जगह थी कि छत में से नीचे कूद सकते हैं। वो छत में से नीचे आ गए और आकर धीरे धीरे टटोलते ढूंढते ढूंढते सामने हमारा बेडरूम था, उसके सामने बाबा का कमरा था। हम बाबा के कमरे में बैठे थे, हमें संकल्प आया कि बाबा के साथ बैठने में ही हमारी सेफ्टी है। एक बहन ने कहा कि हम अपने कमरे में जाकर अंदर से दरवाजा बंद कर लेते हैं। तो हमें संकल्प आया नहीं, बाबा के कमरे में हमको बैठना है, बाबा के साथ बैठना है। और बाबा के कमरे में बैठे रहे और जैसे ही वो अंदर आ गए तो बहनें बहुत डर गई। तो उन्होंने कहा कि नहीं, दरवाजा बंद कर लेते हैं बाबा के कमरे का। लेकिन वो बरसात का समय था, दरवाजा खुल गया था पानी के कारण, तो दरवाजा बंद नहीं हुआ। तो मैंने कहा नहीं, खोल दो दरवाजा और उनको भी अंदर आने दो। और हमने बहुत प्यार से उनको कहा कि आइए आइए, हमारे बाबा का कमरा है। सभी लाइट जलाकर उनको बाबा के कमरे में बिठाया और बहुत पावरफुल उनको दृष्टि दी। तो वो ऐसे ऐसे प्रश्न पूछने लगे ज्ञान की कि ये कौन है, आप लोग क्या करते हो यहाँ पर। फिर हमने अच्छी तरह से उनको 20 मिनट बाबा का ज्ञान सुनाया और ज्ञान सुनते 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 वो तीनों बिल्कुल शांत हो गए। और शांत होने के बाद फिर वो कहने लगे, तब तक रात के 2 बज चुके थे और उन्होंने कहा ये अब हम लोग जाएं। तो हमने कहा कि हमारा अमृत वेला हो गया है, बाबा को याद करने का समय हो गया है, आप भी याद करें। तो उनको बड़ा आश्चर्य हो गया कि आप लोग इतनी जल्दी उठते हैं। तो हमने कहा हम बहुत जल्दी उठते हैं और भगवान को याद करते हैं। तो उन्होंने कहा कि दीदी बहन जी, आप लोग तो धन्य हैं, आप लोग तो देवदूत हैं, आप माफी मांगते हैं, हम तो गलत दृष्टि से आए थे, लेकिन यहाँ तो वातावरण ही कुछ और है और सचमुच में आप तो देवियां हो, पैर छूने लगे और माफी मांग करके वो चले गए। तो इस प्रकार से बाबा के घर आने के बाद तो बाबा इतने अनुभव कराते हैं सेवाओं के क्षेत्र में, चाहे किसी भी क्षेत्र में, स्व पुरुषार्थ में, कदम कदम पर ऐसा अनुभव होता है हम अकेले नहीं हैं, बाबा के साथ में कंबाइंड हैं। और बाबा को हम सर्व संबंधों से अनुभव करते हैं, सेवाओं में भी अनुभव करते हैं, स्व पुरुषार्थ में भी अनुभव करते हैं कि कैसे बाबा हमको साथ देता है। क्योंकि सेवाओं में सफलता बहुत जरूरी होती है, तो सेवाओं में हम यही योग का प्रयोग करते हैं कि करण करावनहार बाबा है, हम तो निमित्त आत्मा हैं। तो बाबा अनुभव कराता है कि कैसे, चाहे व्यवहार में, चाहे संगठन में चलने में, चाहे सेवाओं में, कैसे बाबा सफलता दिलाता है। ये हर पल बाबा के साथ काम को अनुभव होता है।
मैं प्रोफेसर कमल दीक्षित, मीडिया एजुकेशन और मीडिया प्रोफेशन से जुड़ा रहा हूँ, कुछ अखबारों में संपादक रहा हूँ और माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय में मीडिया प्रोफेसर था। मैं इस ज्ञान से असल में पहली बार जब मीडिया के लोगों के लिए एक योग शिविर हुआ माउंट आबू में, उस समय पहली बार इससे संबंधित हुआ। और मैं सच बताऊं आपको, मैं पहली बार इसमें इससे प्रभावित नहीं हुआ। ये जरूर है कि मुझे ये ज्ञान जो है और परंपरागत ज्ञानों से थोड़ा भिन्न लगा, अलग लगा। कुछ वर्षों तक हमारे ओम प्रकाश भाई जी ने मुझे लगातार प्रेरित किया और उसके बाद में मुझे इसके संबंध में विचार करना मैंने शुरू किया। तो कुछ लगभग 6 वर्षों बाद मैंने ये महसूस किया कि ये ज्ञान जो है वो परंपरा के ज्ञान से अलग तो है मगर अच्छा भी है। और सबसे बड़ी कठिनाई जो मुझे हुई थी वो ये थी कि परमात्मा के अवतरण के संबंध में, यहाँ ये कहा गया था कि परमात्मा अवतरित होकर के और संसार के कल्याण का कार्य कर रहे हैं, जबकि परंपरा से जो हमने सुना था उसके हिसाब से अवतरण की प्रक्रिया और वो दूसरी अलग रही। तो यही सबसे एक अलग बात जो कठिनाई जो रही है सोचने में। हालांकि कुछ विशेष बातें थीम जो बहुत अच्छी भी लगी, क्योंकि मैंने अब तक जो देखा था उसमें ये था कि हर मार्ग में कोई एक विशेषता होती है। कोई भी एक मार्ग, कोई भी मार्ग ऐसा नहीं था जिसमें ज्ञान, योग और धारणाएं और सेवाएं, ये चारों के चारों एक साथ मिलकर के सम्मिलित रूप में, एक दूसरे से जुड़े हुए इंटीग्रेटेड रूप में थी। तो मुझे ये बात ठीक लगी कि सचमुच में यदि आप अपने आप में अध्यात्म के आधार पर परिवर्तित करते हैं तो दूसरों के कल्याण के संबंध में भी सोचें और करें। तो ये कुछ बातें थी जिनकी वजह से मैं फिर इसके साथ जुड़ा और जुड़ने के साथ लगातार जुड़ता चला गया, और मैंने महसूस किया कि इससे मेरे जीवन में, मेरे कार्य में, खासतौर पर मेरे कार्य में भी इसमें बहुत परिवर्तन हुआ। सामान्य तौर पर ये समझा जाता है, और मैं भी शुरू में मानता था कि अध्यात्म जो है दरअसल परमात्मा से मिलने के लिए और संसार को छोड़ करके उस तरह से अपनी उपलब्धता या अपने अनुभव को प्राप्त करने के लिए होता है। मगर यहाँ आने के बाद मुझे ये लगा कि नहीं, जीवन में रहते हुए, आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हुए अपने जीवन में मूल्यानुगत परिवर्तन करके, और न केवल आप अपना रूपांतरण करते हैं बल्कि अपने पूरे परिवेश, अपने परिवार और अपने समाज के साथ भी जो आप व्यवहार करते हैं उसमें वे लोग भी आपके कारण दूसरे लोग भी परिवर्तित होते हैं, और तब ये जो एक नारा कहें, स्लोगन कहें, कुछ भी कहें कि आप बदलेंगे तो जग बदलेगा, तो ये इस पर विश्वास हुआ कि हाँ सचमुच में यदि व्यक्ति में परिवर्तन होता है, व्यक्ति के विचार, सोच और उसके व्यवहार में परिवर्तन होता है तो सचमुच में संसार में परिवर्तन हो सकता है। जो वर्तमान स्थिति है संसार की, उसके लिए ये बहुत सामयिक लगा कि संसार में यदि गुणात्मक परिवर्तन की आवश्यकता है तो उसके लिए व्यक्ति के परिवर्तन की नितांत आवश्यकता है। वो केवल पढ़ने लिखने या केवल सोचने समझने से नहीं होगा, बल्कि जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं उस ज्ञान को अपने जीवन में धारण करके और उसे व्यवहार में लाने की बात है। दूसरा ये बात थी कि दरअसल में आपको महसूस, आपको ये अनुभव होना चाहिए, बल्कि इस स्वरूप में भी रहें कि आप हैं कौन, ये इंद्रियों के समुच्चय एक शरीर के रूप में है या इसका, इसको संधारण करने वाली आत्मा या उसकी केंद्रीय स्थिति में है। तो ये अनुभव जब हो जाता है कि नहीं सचमुच में मैं आत्मा हूँ और ये शरीर तो उस आत्मा का वाहक है, वो उस, जब ये अनुभव और इस स्वरूप में आते हैं तो न केवल आपके दृष्टि में परिवर्तन होता है बल्कि दृष्टि में, विचार में और एक तरह से संपूर्णता में आपके परिवर्तन होता है। ऐसा रूपांतरण करने वाला जो मार्ग है वो मुझे ये ब्रह्मा कुमारी इसका लगा, और इसलिए अब मैं मीडिया के माध्यम, चूंकि मैं, मेरा पूरा जीवन मीडिया से ही जुड़ा रहा है, मीडिया में रहा हूँ, मीडिया के काम करता रहा हूँ, तो मीडिया से जुड़ करके और मीडिया लोगों को ज़्यादा अच्छी तरह से लोगों तक ये जानकारियाँ पहुँचा सकता है, प्रेरित कर सकता है, तो उसके माध्यम से जुड़ करके और आप अपने साथ साथ और लोगों के कल्याण के भाव के साथ में कार्य में लगा हुआ हूँ।
शरीर का नाम किशोर भाई है। मेरा अनुभव है कि जब मैं फैक्ट्री में सर्विस करता था तो मेरे मन में तीन ख्याल चलते थे, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और कहाँ जाना है, और चौथा ख्याल ये चलता था कि मैं जो भी कर्म कर रहा हूँ वह परफेक्ट व श्रेष्ठ कर्म है, इसको हम कैसे समझें। ये चार प्रकार के प्रश्न हमेशा मन में चला करते थे। एक दिन क्या हुआ कि मेरा मित्र ही मेरे से मिला और मुझे बताया कि हम इस प्रकार से माउंट आबू जा रहे हैं और वाया अहमदाबाद होते हुए जाएंगे। तो मुझे आश्चर्य लगा कि ये भगवान से मिलने जा रहा है और मैं तो भगवान को ढूंढ रहा हूँ। तो मैंने उनसे कहा कि कौन सी जगह आप जाते हैं, मुझे ले चलो। तो उसने कहा कि नहीं, मैं आपको परसों ले चलूँगा। लेकिन उस रात को मुझसे रहा नहीं गया, सारी रात जागता रहा, ये कैसे हो गया, ये भगवान से मिलने जा रहा है और मैं भगवान को ढूंढ रहा हूं, ये तो गलत बात हो गई। दूसरे दिन उसके आते ही मैं उनसे मिला और उनसे पहले पहले ये कहा कि मैं आज ही आपके साथ चलूंगा, मैं वेट नहीं कर सकता। और उसी दिन उसके साथ मैं गया, वो उसी जगह पे लाया जिस जगह पे पहले कभी मैंने रुक करके देखा था और सोचा था कि ये जगह यदि अच्छी है तो यहां से कोई मुझे लेने आएगा तो मैं जरूर जाऊंगा, और वो वही जगह थी। और जैसे ही मुझे एक भाई ने म्यूजियम समझाया तो जहां आत्मा का परिचय और परमात्मा का परिचय मिला और मुझे ये महसूस हो गया कि यही जगह मैं ढूंढ रहा था। रोज सुबेरे 3 बजे उठना और क्लास करने जाना, 8 बजे अपनी ड्यूटी करना, और इस प्रकार से मेरा जीवन परिवर्तन हो गया। और अब जो सुबेरे सुबेरे मैं साइकिल लेके जाया करता था तो कुछ विशेष अनुभव हुए कि जैसे ठंड के दिन आए थे तो ठंड के दिन में जैसे साइकिल चलाते हुए जा रहा था तो साइकिल चलाते चलाते जैसे एकदम से जैसे कहें कि नींद आ गई या मैं अपने होश में ही नहीं रहा और जैसे कोई सो जाता है, इस प्रकार की स्थिति हुई। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि साइकिल बराबर चलाते जा रहा था और मुझे पता ही नहीं कि साइकिल चल रही क्या हो रहा है, मैं जैसे अनकॉन्शियस सोया हुआ हूं जैसे ऐसा फील कर रहा था। लेकिन जैसे ही सेवा केंद्र आई तो मुझे जागृत अवस्था में आ गया और मुझे पता चला कि सेवा केंद्र आ गया। लेकिन ये इस बीच में ये साइकिल चली कैसे, ये आश्चर्य था। लेकिन चला गया, सेवा केंद्र में गया, इस पर बड़ा सोच रहा था कि ये सब क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो एक दिन भाई जी वहां पे रायपुर में आए थे, उन्होंने अपना अनुभव बताया कि जब हम लोग छोटे होते हैं, बच्चे होते हैं, तो हमको भगवान चलाते हैं। तो ये शब्द सुनते ही मुझे पता चला कि नहीं, ये जो मैं बीच में जो मुझे नींद आ गई थी या मुझे समझ में नहीं आया कैसे ये साइकिल चली, तो ये जरूर भगवान की मदद थी। तो इस प्रकार से कई अनुभव होने लगे और मैं बराबर इसमें चलता रहा।